बिन रोए आंसू पार्ट 10। पूरा नॉवल सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और यूनिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस वक्त पर मिली जा सकें। शुक्रिया। रोज की तरह रात को मम्मा और मौज उसके कमरे में थे। वो रोजाना की बनिस्बत आज जल्दी सो गया था। मम्मा ने सोते हुए मौज पर एक शफकत भरी निगाह डाली, फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। तुम्हें नींद तो नहीं आ रही सबा? उसने मम्मा की तरफ ना समझ में आने वाले अंदाज में देखा। उनका अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो उससे कोई बात करना चाहती हैं। इसने नफी में सर हिला दिया। मौज उन दोनों के बीच में लेटा हुआ था। सबा, माँ और बेटी का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता भी होता है। माँ बेटी से हर बात दोस्तों की तरह करती है और बेटी भी दोस्तों की तरह माँ से अपनी हर कैफियत शेयर करती है। वो इसकी तरफ देखते हुए बहुत मतनात और बुरबारी से बोली। इसीलिए बेसाख्तगी में अपनी जगह से उठकर बैठ गई थी। क्या बात है मम्मा? सबा, मैं चाहती हूँ आज हम दोस्तों की तरह बातें करें। मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम फैसले के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो इसकी तरफ देखते हुए बड़े धीमे लहजे में बोली। हम लोग तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। बहुत से रिश्ते हैं हमारे सामने, मगर तुम्हारी जिंदगी के फैसले का अख्तियार तुम्हारे ही पास होना चाहिए। अगर तुम किसी को इस हवाले से पसंद करती हो तो तुम मुझे इसके बारे में बताओ। वो जवाब में चंद लम्हों तक कुछ बोल नहीं सकी थी। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं। वो झूठ बोल भी नहीं रही थी। जो कुछ उसकी जिंदगी में था वो उसका माजी था। अब ना उसकी जिंदगी में, ना इसके दिल में, ना इसकी सोचों में कहीं भी कोई नहीं था। फिर क्या हम लोग अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए किसी को चुन सकते हैं? क्या तुम हमें ये हक दे रही हो? उनकी आंखों में बड़ी उम्मीद भरी चमक उभरी थी, ऐसे जैसे उसके जवाब ने उन्हें बड़ी खुशी दे दी हो। उसने सर अस्पात में हिला दिया था। अगर हम तुम्हारी शादी इर्तजा से कर दे तो? उसे जैसे एकदम करंट सा लगा, वो पूरी की पूरी हिल गई। तुम मुझे खुद गर्ज मत समझो सबा, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि तुम हमेशा मौज की माँ का रोल अदा करो, उसकी परवरिश करो। इसमें कोई शक नहीं कि तुमसे बेहतर मौज का ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। कल को अगर इर्तजा ने दूसरी शादी कर ली तो वो दूसरी लड़की चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारी तरह इसकी देखभाल नहीं कर सकेगी। ये सब बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मेरे तुमसे इर्तजा से शादी के बारे में कहने की वजह ये हरगिज नहीं। सच तो ये है सबा कि इर्तजा से बेहतर तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। वो तुम्हें समझता है, तुम्हारे मिजाज को समझता है। उसने मेरी एक बेटी को इतना सुखी रखा है कि मैं अपनी दूसरी बेटी बहुत खुशी से उसे दे सकती हूँ। ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं है, तुम्हारे डैडी और खजनफर भाई की भी यही ख्वाहिश है। तुम हमेशा हमारी नजरों के सामने रहोगी, मास को भी माँ का प्यार मिल जाएगा हमेशा के लिए, इर्तजा का घर फिर से आबाद हो जाएगा। वो बहुत संजीदगी से उसे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी। आप कैसी बातें कर रही हैं मामा? कितनी देर बाद वो खुद को बोलने पर आमादा कर पाई। उससे अपना झुका हुआ सर उठाया नहीं जा रहा था। सबा, इर्तजा बहुत अच्छा है, वो मेरी नजरों के सामने पला बड़ा है। मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी। तुम्हारी तो खुद उसके साथ कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मेरा दिल कहता है तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। उनका लहजा इल्तिजाहिया हो गया था। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता मामा, मैंने इर्तजा भाई के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा। दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग का ये मतलब नहीं कि मैं उनके साथ शादी कर लूं। मैंने उन्हें कभी इस नजर से नहीं देखा। मैंने हमेशा उन्हें समन के हवाले से देखा है और मैं किसी और हवाले से उन्हें देखना नहीं चाहती। उसका लहजा बेलचक और सख्त था। वो इस मौजू पर मजीद एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती थी। बाकी जिन प्रपोजल्स का आप जिक्र कर रही हैं, इनमें से आप लोग इसे चाहें मेरे लिए मुंतखब कर लें। मैं आप लोगों के किसी फैसले पर इतराज नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मामा, ये बात मुझसे दोबारा मत कीजिएगा। मुझे ऐसी बात सोचते हुए भी शर्म आ रही है। मामा इसका दो टोक अंदाज देकर खामोश हो गई थी। वो आंखें बंद करके सोने के लिए लेट गई। आंखें बंद करते ही समन उसके सामने आ खड़ी हो गई। क्यों मना कर दिया तुमने मामा को? उन्होंने तो वही बात की थी जो तुम्हारी ख्वाहिश थी और जिसके पूरा होने के लिए ही तुमने मेरे मरने की दुआ मांगी थी। मत इनकार करो मामा को, ये तो तुम्हारी बचपन की ख्वाहिश है। मोहब्बत ना मरती है ना खत्म होती है, वो अब भी जरूर तुम्हारे दिल में किसी ना किसी जगह मौजूद होगी। आगे बढ़ो और पालो अपनी मोहब्बत। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए इसीलिए तो मैं यहाँ से चली गई थी। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी, इसे तंज कर रही थी। जो काम उसने जिंदगी में कभी इसके साथ नहीं किया था, अब बड़ी सफाकी से कर रही थी। वो सिसक उठी। नहीं समन, तुम बिल्कुल गलत सोचती हो, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मेरा यकीन करो समन, उसने चिल्लाते हुए इसे ये बात कहनी चाहिए, मगर वो उसकी बात सुने बगैर वहाँ से गायब हो गई थी। इसने एकदम आंखें खोल ली। कमरे में अंधेरा था। मामा दूसरी तरफ करवट लिए शायद सो चुकी थी। मौज भी गहरी नींद में सो रहा था। क्या हो गया है बाबा आपको? सबा के बारे में ऐसी कोई बात मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची। इर्तजा ने बाबा के मुंह से ये बात सुनते ही बगैर एक लम्हे की देर लगाए फौरन इनकार कर दिया। सोची नहीं थी तो अब सोची जा सकती है। तुम उसे बच्ची समझते हो, मगर अब वो बच्ची है नहीं। बाबा उसके दो टोक इनकार पर एकदम बोल उठे। कब तक तन्हा जिंदगी गुजारोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें अपने लिए कोई फैसला करना होगा। तो वो लड़की सबा क्यों नहीं हो सकती? हमारे घर की रौनकें वापस आ जाएंगी। मौस को माँ का प्यार मिल जाएगा। उसने उनकी सारी बात बहुत खामोशी से सुनी। जैसे ही वो चुप हुए, वो बोलना शुरू हो गया। सबसे पहले तो बाबा, आप अपना ये खौफ दूर कर लें कि मैं मौस के लिए कोई सौतेली माँ लेकर आने वाला हूँ, बल्कि बेफिक्र रहें आप। दूसरी बात सबा के बारे में, वो एक पल को खामोश हुआ, फिर इसी मुस्तहकम और फैसला कुन अंदाज में दोबारा बोलने लगा। अगर आपके कहने पर इस बात को जहन से निकाल भी दूं कि मैंने सबा के लिए इस अंदाज में कभी नहीं सोचा, और ये कि वो अब इतनी छोटी नहीं है जैसा मैं उसे समझता हूँ, तब भी बाबा मैं ये फैसला कभी नहीं करूँगा। मैं इतना खुदगर्ज कभी नहीं हो सकता कि उससे महज इसलिए शादी कर लूं कि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिल जाएगा। उसका हक है जिंदगी की खुशियों पर, कोई ऐसा शख्स जो उसे सच्चा प्यार दे। आपको पता है ना, सबा मुझे कितनी अजीज है। मैं किसी दूसरे को उस पर ज्यादती करते नहीं देख सकता। खुद कैसे उसके साथ कोई ज्यादती कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ उसे जिंदगी में सच्ची मोहब्बत मिले, उसे जिंदगी में सब कुछ मिले। बाबा बेबसी और मायूसी से उसे देख रहे थे। वो उसे कायल नहीं कर पाए, उन्हें अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। अभी आप हमारे घर की खुशियों के बारे में बात कर रहे थे बाबा। हमारे घर की खुशियाँ सबा और जफर की शादियां करके भी लौट आ सकती हैं। जफर अमेरिका में बहुत अच्छी तरह सेट है, उसकी यूनिवर्सिटी में जॉब बहुत अच्छी चल रही है। इससे इस बारे में बात करके उसकी शादी के बारे में सोचा जा सकता है। सबा का एमएससी कंप्लीट हो गया है, इसमें किस बात की कमी है जो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ना मिल सके। उन दोनों की शादी करके हमारे घर की रौनकें लौट आएंगी। वो उनकी मायूसी महसूस कर अपना हाथ उनके हाथ पर रखकर उन्हें अपना मौकफ समझाने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों के इतनी सख्ती से इस बात को रद्द कर देने के बाद दोबारा इस जिक्र की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। हाँ, सबा और जफर की शादी के सिलसिले में अब सब ने बड़ी संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया था। जफर को यूनिवर्सिटी ऑफ डेलस में जॉब ऑफर हुई थी। उसने मामा और डैडी की इजाजत से इस ऑफर को कबूल कर लिया था। मामा ने उससे फोन पर इस बारे में बात की तो उसने अपनी शादी का फैसला मुकम्मल तौर पर मामा पर छोड़ दिया। मामा की कॉलेज की दोस्ती रिजवाना आंटी, उनकी बेटी आसमा मामा को बहुत पसंद थी। मामा की पसंद को घर के बाकी अफराद ने भी पसंद किया था। यूं एक खूबसूरत शाम आसमा को अंगूठी पहनाकर ये रिश्ता पक्का कर दिया गया। जहाँ तक सबा की बात थी, उसके लिए 3-4 प्रपोजल्स आए हुए थे। जब उसने फैसला मामा और डैडी पे छोड़ दिया तो उन्होंने संजीदगी के साथ उन पर गौर करना शुरू कर दिया। मामा खानदान में शादी करने के हक में थी। खानदान के लोगों के बारे में पता होता है, किसी छानबीन की जरूरत नहीं पड़ती। एक दूसरे की अच्छाई बुराई सब पहले से मालूम होती है। मामा की इस बात से बाबा ने भी इत्तेफाक किया था। खानदान में से आए हुए रिश्तों में से उन्हें सफीर फिरोज का रिश्ता ज्यादा पसंद था। सफीर कराची से बीई करने के बाद कनाडा एमएस करने के लिए चला गया था। उसे वहीं पर बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। उसने तजर्बा के तौर पर वहां जॉब कर ली थी। मुस्तकबिल में उसका पाकिस्तान वापस आने और अपनी जाती इंजीनियरिंग फर्म इस्टेब्लिश करने का इरादा था। मामा और डैडी के पास इस रिश्ते को दूसरे रिश्तों पर तरजीह देने की कई वजूहात थी। सबसे बड़ी और अहम वजह फिरोज खालिद के घर का माहौल था। वो और उनकी बीवी दोनों बहुत पढ़े लिखे और वजादा किस्म के लोग थे। मामा सबा को शादी करके इतनी दूर कनाडा भेजने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मगर ये सुनकर कि सफीर 1-8 साल में कराची वापस आने का इरादा रखता है, इस रिश्ते की तरफ से हर तरह से मुतमाइन हो गई थी। इसकी और जफर की शादी की तारीखें आगे पीछे रखी गई थी। जफर की शादी उसकी शादी से 1 हफ्ता पहले थी। ऐसा जफर की ख्वाहिश पर किया गया था। वो चाहता था कि सबा उसकी शादी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सके, वरना पहले उन दोनों की साथ शादी करने का प्रोग्राम था। सफर शादी से 1 महीना पहले कराची आ गया था। अपनी शादी से ज्यादा वो सबा की शादी की तैयारियों में मसरूफ था। इर्तजा तो पहले ही इसकी शादी की तैयारियों में बहुत पुरजोश तरीके से हिस्सा ले रहा था। शादी की तकरीबन तमाम शॉपिंग मामा ने इर्तजा के साथ की थी। सफीर भी शादी से 8 दिन पहले कराची आ गया था। जफर के वलीमे के अगले दिन उसे मायो बिठाया गया था। इस रात इर्तजा इसके कमरे में आया। जफर और आसमा पहले ही वहाँ मौजूद थे। ये तुम्हारी शादी का तोहफा, वो डब्बा देखकर ही समझ गई कि इसमें ज्वेलरी है। एक बार हम यूं ही बातें कर रहे थे तो समा ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें शादी पर तोहफे में डायमंड का सेट देना चाहती है और साथ ही तुम्हें और तुम्हारे शोहर को हनीमून के लिए हवाई जहाज का रिटर्न टिकट भी। अब दूसरे वाले तोहफे की तो कोई जरूरत है नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हारा हनीमून नियाग्राफल की खूबसूरतियों को सहराते हुए गुजरना है। वो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में उसे समन की इस बारे में कही गई एक एक बात बता रहा था। जल्दी से खोलकर देखो सबा, पता तो चले इतजा भाई की चॉइस कैसी है? आसमा सेट देखने के लिए बड़ी मुतजिस नजर आ रही थी। वो बजाहिर आसमा के साथ सेट देखने लगी थी, लेकिन अंदर ही अंदर इतजा की बातों ने उसे बहुत डिस्टर्ब किया था। इस वक्त जबकि वो कोई तकलीफदा बात सोचना नहीं चाहती थी, वो उसे बता रहा था कि समन उसके लिए क्या क्या सोचा करती थी, वो उसके लिए क्या क्या ख्वाब देखा करती थी, उसके लिए सबा शफी के लिए जो उससे आगे सोचने की उसकी हिम्मत नहीं थी। ये तुम्हारी चमची शादी के बाद भी अपने सारे मसले लेकर तुम्हारे पास आया करेगी। सफीर तो देखना चंद महीनों में ही तुमसे चिढ़ने लगेगा। सफर बहुत अरसे बाद इसके साथ छेड़छाड़ करने के मूड में था। सबा अब मेरे साथ अपनी कोई बात शेयर नहीं करती, बहुत बड़ी हो गई है सबा। उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स छुपाना छोड़ दी हैं। इतजा ने जफर से शिकवा करने वाले अंदाज में कहा। ये असला तो मेरे लिए बहुत खुशी की है, यानी मैं ये तवक्का कर सकता हूँ कि अब अगर कभी मैं और तुम किसी मुकाबले में आमने सामने आए तो ये मीर जाफिर अपने सगे भाई को फेवर करेगी। जफर आज वाकई बिल्कुल पुराने मूड में था, शायद वो उसे हंसाना चाहता था। जो वक्त गुजर चुका था उसे कुछ देर के लिए वापस लाना चाहता था। काफी देर तक वो तीनों उसके कमरे में बैठे रहे। वो इसकी छेड़छाड़ के जवाब में बजाय लड़ने के मुस्कुरा रही थी। वो भाई की ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, मगर उसके साथ लड़ाई झगड़ा और बहस करने वाली सबा को वो कहां से ढूंढ कर लाती? वो सबा तो अरसा हुआ कहीं खो गई थी। निकाह के वक्त उसके पास बहुत से लोग थे। उसके बिल्कुल करीब मामा बैठी थी, वहाँ जफर भी था, बाबा भी थे। इन सब के बावजूद उसने अपने चारों तरफ एक वजूद को तलाशा था। समन तुम कहाँ हो? आओ देखो, तुम्हारी सबा आज दुल्हन बनी है, आज उसकी शादी है। अब तो यकीन कर लो कि सबा तुमसे कुछ भी छीनना नहीं चाहती थी। वो तुमसे हसद नहीं करती थी, वो तुम्हारी खुशियों से नहीं जलती थी। देख लो, उसने तुम्हारी किसी चीज पर अपना हक नहीं जताया। वो इस घर से रुखसत हो रही है, सब कुछ छोड़कर तुम्हारी किसी भी चीज पर निगाह डाले बगैर। यकीन आ गया ना तुम्हें कि सबा ने कभी तुम्हारी जगह नहीं लेनी चाहिए थी। तुम्हारी जगह कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है, उसके रोए रोए ने समन को बेआवाज पुकारा था। उसे रुखसत करते वक्त मामा उसे गले लगाकर कितनी देर तक रोती रही थी। डैडी की आंखों में भी नमी थी। सबा तुम बहुत याद आओगी, इतजा के लहजे में भी उदासियां खिली हुई थी। अपने ससुराल में पहला कदम रखते हुए उसने खुद से एक अहद कर लिया, ये कि वो अपने शोहर की हमेशा वफादार रहेगी, ये कि वो एक बहुत अच्छी बीवी बनेगी। ससुराल में इसका बड़े शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया था। वो वाकई अपने ससुर सास की लाडली बहू लग रही थी। अलीना और तलहा भी हासे खुश नजर आ रहे थे। उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। उसके जहन में इस वक्त सिवाय अपने शोहर के किसी का भी ख्याल नहीं था। उसका सर झुका हुआ था, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि वो एक एक कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो बेड के पास आकर रुक गया। वो इससे सिर्फ एक कदम के फासले पर खड़ा था और बहुत गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। वो अपने चेहरे पर उसकी निगाहों की तपिश महसूस कर रही थी। चंद सेकंड वो इसी तरह खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसने बगैर कुछ कहे एक नीले रंग के ज्वेलरी केस उसके पास बेड पर रख दिया। वो अभी उसकी हरकत पर हैरान हो रही थी कि वो इसके पास से हट गया। उसने बेसाख्ता अपना झुका हुआ सर उठाकर पहली मर्तबा उसकी तरफ देखा। उसकी सभा की तरफ पुश थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर से सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाया और फिर उसकी तरफ देखे बिना स्लाइडिंग डोर खोलकर बाहर बालकोनी में चला गया। बालकोनी में जाने के बाद उसने स्लाइडिंग डोर वापस बंद नहीं किया था। बालकोनी में मुकम्मल अंधेरा था, मगर कमरा तो पूरी तरह रोशन था। वो इसे बहुत आराम से देख सकती थी और वो उसे देख भी रही थी। वो रेलिंग पर बाजू टिकाए स्मोकिंग कर रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी सफीर के रवैये को। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो खड़े खड़े थक गया तो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। रात का बाकी हिस्सा उसने कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीते हुए गुजारा। वो वैसे ही बैठी उसकी तरफ देखती रही जबकि वो इसकी तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जा नहीं था। सुबह के करीब उसकी आंख लग गई थी और वो कुर्सी से टेक लगाए ही सो गया था। अजान हुए बहुत देर हो चुकी थी जब अचानक उसकी आंख खुली। वो आहिस्तगी से बेड से उठी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी ज्वेलरी उतार रही थी। किसी लड़की के साथ शादी की पहली रात उसका शोहर ऐसा सलूक करे और वो रोए भी नहीं, कितनी नामुमकिन बात है ये। उसने आंखों को आईने में देखा, उनमें हल्की सी भी नमी नहीं थी। यूं जैसे उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि इसकी इंसल्ट की गई है, इसके वकार को ठेस पहुंचाई गई है। ज्वेलरी उतारने के बाद वो ड्राइंग रूम से होती हुई अपने कमरे के ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने कपड़े बदले, फिर वजू किया। चाय नमाज उसे ड्रेसिंग रूम में रखी मिल गई थी। वो सरपट नमाज के लिए दुपट्टा ओढ़ती ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली तो नजरें सीधी सफीर पर पड़ी। वो कमरे में वापस आ चुका था। वो उसके बिल्कुल सामने सोफे पर बैठा था। उसने भी कुछ चौंक कर उससे देखा था। मुझे नमाज पढ़नी है, किबला किस तरफ है? उसने सफीर की तरफ देखते हुए बहुत आम से और जज्बात से आरी अंदाज में पूछा। वो बुरी तरह चौंक गया। उसके पास आकर उसने जाय नमाज उसके हाथ से ली और खुद ही बिछा दी। वो जाय नमाज बिछा कर हटा तो वो फौरन नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। वो वापस सोफे पर बैठ गया। नमाज पढ़कर जाय नमाज तय करते हुए वो वापस मुड़ी तो सफीर को अपनी तरफ देखता हुआ पाया। वो बहुत गौर से उसे देख रहा था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसका लहजा बेतासुर था। सफीर ने उसे इशारे से सोफे पर बैठने के लिए कहा। मैं जो बातें तुमसे करने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए यकीनन बहुत तकलीफदा होंगी, मगर झूठ और मुनाफकत से मैं सख्त नफरत करता हूँ, वो इसकी तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला। कल रात तुम मुझे बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन इस वक्त तुम्हें देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि इस सारे किस्से में मेरे अलावा अगर किसी पर जुल्म हुआ है तो वो तुम पर, तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का कोई कसूर नहीं, तुम लोगों के साथ ज्यादती हुई है। इस किस्से के असल मुजरिम मेरे वालदैन हैं, वो बहुत साफ गोई से बोला। वो खामोशी से इसकी तरफ देखती रही। पापा कहते हैं उन्होंने आज से कई साल पहले तुम्हें अपनी बहू के तौर पर पसंद कर लिया था। हम लोग तुम्हारे घर किसी फंक्शन में गए थे, तब मम्मी ने मुझे तुम्हें दिखाते हुए बताया था। इस वक्त मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसकी वजह से तुम्हारे लिए इनकार कर देता। मुझे भी तुम अच्छी लगी थी। मेरी रजामंदी लेने के बाद मम्मी ने तुम्हारे घर वालों से रिश्ते की बात की, मगर तुम्हारे घर वालों ने इनकार कर दिया। मेरे हिसाब से वो बात वहीं खत्म हो गई थी, मगर मैं जानता नहीं था ये बात खत्म नहीं हुई। उसके लहजे में गुस्सा छलकने लगा। फिर मैं मास्टर्स करने के लिए कनाडा चला गया। वहाँ मुझे मार्गरेट मिली, वो भी मेरी तरह सिविल इंजीनियर थी, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एमएस कर रही थी। मुझे ये इतराफ करने में कोई आर नहीं है कि खूबसूरती से मैं बेशक बहुत सी लड़कियों से मुतासिर हुआ हूँ, मगर मोहब्बत मुझे सिर्फ मार्गरेट से हुई। वो एक अंग्रेज फैमिली से ताल्लुक रखती है। उसके वालिद अपने बिजनेस की वजह से बरसों पहले इंग्लैंड छोड़कर कनाडा सेटल हो गए थे। बहुत डिफरेंसी फैमिली से ताल्लुक है उसका। उसके यहाँ बहुत सी ऐसी बातें बुरी समझी जाती हैं, जिन्हें मजहबी कल्चर में बुराई समझा नहीं जाता। मैंने उसे प्रपोज किया और जब उसने मेरे प्रपोजल का हाँ या ना में जवाब देने का फैसला अपने वालदैन पे छोड़ा तो मैं हैरान रह गया। वो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले गई। वो लोग मुझसे मिले और उन्हें मैं पसंद आ गया। वो लोग चाहते थे कि मुझसे शादी के लिए उनकी बेटी अपना मजहब ना बदले, मगर मैंने मार्गरेट से साफ कह दिया कि अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करती है और शादी करना चाहती है तो उसे मुसलमान होना होगा। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि ये बात आसानी से मान गई। उसने अपने वालदैन को भी मना लिया। मैं जानता था मेरे इस फैसले से मेरे वालदैन को इख्तलाफ होगा। वो एक अंग्रेज लड़की को चाहे वो कितनी ही अच्छी फैमिली से ताल्लुक क्यों न रखती हो, बहू बनाने के लिए खुशी खुशी तैयार नहीं हो सकते। मम्मी पापा के साथ हम बहन भाइयों के हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमारी जिंदगी का हर फैसला खुद करने की आजादी दी थी। उन सब बातों को जहन में रखते हुए मेरा ख्याल था कि थोड़ी बहुत बहसो तकरार के बाद मैं उन्हें मना लूंगा। मैंने पापा को फोन पर मार्गरेट के बारे में बताया तो वो गुस्से में पागल हो गए। मैं उन्हें कायल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना माने और मैं उन्हें नाराज करके शादी नहीं करना चाहता था। मैंने मम्मी पापा को अपने पाकिस्तान आने का बता दिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वालदैन भी कभी औलाद के खिलाफ इस तरह की साजिश कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने मुझे बताए बगैर तमाम घर रिश्ते की बात की और झटपट शादी की तारीख भी तय कर ली। मैं उन्हें हर कीमत पर मना लेना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने पाकिस्तान आने से पहले मार्गरेट से बकायदा इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। मेरे साथ इस्लामिक सेंटर जाकर उसने बकायदा इस्लाम कबूल किया। वो अब मुसलमान हो चुकी है। इसका नया नाम समीना है। उसे पता था मैं अपने वालदैन को हमारी शादी के लिए मनाने जा रहा हूँ। वो बहुत खुश थी। हमने मुस्तकबिल के कितने हसीन ख्वाब देखे थे। एयरपोर्ट पर वो मुझे सी ऑफ करने आई थी। घर पहुंचते ही मैं हैरान रह गया। यहाँ ऐसी तैयारियां हो रही थी जैसे कोई शादी होने वाली हो। मुझे थोड़ी ही देर में हकीकत का पता चल गया। उनका प्लान 100% कामयाब रहा था। शादी के कार्ड हर जगह बढ़ चुके थे। दूसरे शहरों से कितने रिश्तेदार हमारे घर में मेरी आमद से पहले मेरी शादी में शरीक होने के लिए मौजूद थे। घर में इतने मेहमान थे कि मैं अपने बाप से लड़ भी नहीं सकता था। सब लोग मुझे शादी की मुबारकबाद दे रहे थे और मैं हैरत से सब सुन और देख रहा था। सारी जिंदगी मुझे कुछ देने के बाद किस तरह मेरे वालदैन ने मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनकर अपने हर एहसान की कीमत वसूल कर ली थी। मैंने पापा से इस जुल्म पर एहतजाज किया तो वो दो टोक अंदाज में बोले, हमने तुम्हारी रजामंदी के बाद शफीक से उसकी बेटी के रिश्ते की बात की थी, लेकिन वो बात तो तभी खत्म हो गई थी, उन्होंने मना कर दिया था। मैं जरा गुस्सा हुआ तो वो बेनियाजी से बोले, उन्होंने मना नहीं किया था, सिर्फ ये कहा था कि उनकी बेटी अभी छोटी है, वो इसकी शादी चंद साल बाद करेंगे। मुझे और तुम्हारी मम्मी को अपनी बहू की हैसियत से सबा से ज्यादा कोई लड़की अच्छी नहीं लगी। हाँ, अगर तुम किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी की बात करते तो हम इस बारे में कुछ सोच सकते थे। मम्मी मुझे किसी इंतहाई फैसले से बाज रखने के लिए जज्बाती ब्लैकमेलिंग में मसरूफ थी। तुम्हारे हाथ में है हमारी इज्जत, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। मैंने कोशिश की थी तुम्हारे पापा को समझाने की, मगर तुम जानते हो उन्हें, वो किस कदर जिद्दी हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो मानते ही नहीं। उन्होंने आंसू बहाते हुए मुझसे इल्तिजा की। मैं उन्हें दुनिया के सामने जलील करने का हौसला नहीं कर पाया। मैंने चुपचाप शादी कर ली। मुझे ये बात सोचते हुए शर्म आई है कि अब मैं समीना का सामना कैसे करूंगा। मुझे ये बात सोचते हुए शर्म आई है कि अब मैं समीना का सामना कैसे करूंगा। कल रात तुम्हें घर लाने के बाद एक मरतबा फिर मम्मी मेरे साथ सामने आकर खड़ी हो गई। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। सफीर, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर कह रही हूँ, हमें इसके वालिदैन के सामने शर्मिंदा मत करवाना, प्लीज उसे कुछ मत बताना। उन्हें पता था मैं बहुत गुस्से में हूँ, उन्होंने हाथ जोड़कर और आंसू बहाकर मेरे गुस्से पर बन बांधने की कोशिश की थी। औरत का हुसन मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है, उन्हें यकीन था वो ब्राह रास इसकी तरफ देख रहा था। उसकी खूबसूरती का जिक्र उसने बहुत तमस्खर अंदाज में किया था। सही सोचा था उन्होंने अपने हिसाब से, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। जो लड़की बगैर किसी मेकअप और बनाव संगार के सर पर दुपट्टा ओढ़े इस कदर हसीन लग रही है, उसकी खूबसूरती में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह सकती। तुम बहुत खूबसूरत हो, आला तालीम याफ्ता हो, ये तमाम वजूहात काफी हैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझने के लिए, तुम्हें पसंद करने के लिए, मगर ये तमाम वजूहात काफी नहीं हैं मेरे तुमसे मोहब्बत करने के लिए। हर अच्छा शख्स जो मुझे मोहब्बत भी कर रहा हो, जरूरी नहीं है कि मैं भी उससे मोहब्बत कर लूं, और ये भी जरूरी नहीं है कि इस नापसंदगी के पीछे कोई ना कोई वजह हो। उसे अपनी कही एक बात अचानक ही याद आई तो इसका दिल चाहा कि वो सफीर को ये बताए कि वो भी बिल्कुल इसी की तरह सोचती है। वो भी हर अच्छे शख्स से सिर्फ इस वजह से मोहब्बत नहीं कर सकती कि वो अच्छा है। मुझे तुमसे हमदर्दी है, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उस पर बहुत अफसोस है, मगर मैं इस सब के लिए खुद को कसूरवार नहीं समझता। तुम्हारे साथ जुल्म मेरे माँ बाप ने किया है, अगर कुछ कहना हो तो जाकर उनसे कहो। वो एकदम सोफे से उठा और फिर उसे मजीद कुछ कहे बगैर बाथरूम में चला गया। 6-7 मिनट बाद ही वो तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाथरूम से निकल आया। तौलिया उसने लापरवाही से कुर्सी पर उछाला और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर ब्रश करने लगा। इसी वक्त किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। अस्सलाम वालेकुम भाई, आने वाली शख्सियत अलीना की थी। वो इसे देखकर होले से मुस्कुराई, उसे खुद अपनी मुस्कुराने पर हैरत हुई थी। जो बातें कुछ देर पहले सफीर इससे करके गया था, उनके बाद मुस्कुराने की कोई गुंजाइश बची तो नहीं थी। मैंने अभी सफीर भाई को लाउंज में देखा तो सोचा शायद आप भी उठ गई होंगी, इसलिए आ गई ताकि तैयारी में आपकी मदद करवा दूं। अलीना उसे बहुत गहरी निगाहों से देख रही थी। उसने अपनी 6 माह की बेटी को गोद से उतारकर बेड पे लिटाया और इसके लिए लिबास मुंतखिब करने लगी। ये साड़ी कैसी है? इसने फेरोजी रंग की बनारसी साड़ी इसके सामने करते हुए पूछा। बहुत खूबसूरत है, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो अलीना को अपने चेहरे पर कुछ खोजता हुआ महसूस कर रही थी। भाभी, आप कपड़े बदलिए, मैं शानम को किसी के सपुर्द करके आती हूँ, फिर मुझे आपका मेकअप करना है। मेरा ख्याल है आपके घर से भी आसमा वगैरह आने वाले होंगे, उनके आने से पहले आप तैयार हो जाएं तो अच्छा है, वो अपनी बेटी को गोद में लेते हुए बोली। उसने अस्पात में सर हिलाया। अलीना कमरे से बाहर चली गई तो वो उठकर बेड के पास आ गई। इसने ज्वेलरी केस को उठाया और ड्रेसिंग टेबल के पास आ गई। अलीना के कहने पर इसे खुद भी ये बात याद आ गई कि अभी कुछ ही देर में इसके घर से कोई ना कोई आने वाला होगा, और आने वाले अगर आसमान या उसकी कोई कजन हुई तो पहला सवाल इसी चीज का होगा। इसके हाथ तेजी से हरकत कर रहे थे, उसे वो ज्वेलरी अपने हाथ से पहनने पर खुद पर जरा भी तरस नहीं आया था। तुम्हारे साथ यही सब कुछ होना चाहिए सबा शफीक, तुम इसी की मुस्तहिक हो। वो तंजिया अंदाज पर खुद पर हंसी। अलीना उसका मेकअप करने के बाद ज्वेलरी बनाते हुए सताइशी अंदाज में बोली, आपकी हाइट और फिगर ऐसा है कि आप पर साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत कम लोगों पर साड़ी अच्छी लगती है। वो इसे तैयार करके फारिग हुई ही थी कि जरीना आंटी के साथ कमरे में आसमा और मौज दाखिल हुए। मौज उसे देखते ही भागता हुआ फौरन इसके पास बेड पर चढ़ा। इसने भी बड़े वाहलहाना अंदाज में उसे उससे लपेट लिया। वो इसे देखकर खुश होने के साथ साथ उसकी तैयारियों पर हैरान भी नजर आ रहा था। अलीना ही की तरह जरीना आंटी ने भी उसे बहुत गौर से देखा। इसकी गर्दन पर पर्ल का नेकलेस देखते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली और जो इसके अलावा अलीना ने भी महसूस की थी। अकेली आई है भाभी? उसने आसमा से पूछा। वो इसके पास ही बेड पर बैठी हुई थी। हाँ बस मैं और जफर आए हैं। और हाँ ये मौज भी तो आया है हमारे साथ। वो भी जबरदस्ती पीछे लग कर वो जवाबन मुस्कुराई। तुम लोग बातें करो, मैं देखूं कि नाश्ता अब कब तक लगाया है कि नहीं। जरीना आंटी कमरे से बाहर चली गई, जबकि अलीना इन लोगों के पास ही बैठ गई। नाश्ते के बाद वो जफर और आसमा के साथ घर आ गई। सफीर ने अपनी थकन का जवाब पेश करके साथ आने से माजरत कर ली थी। घर में उसे यूं हाथों हाथ दिया गया गोया वो बहुत दिनों बाद वहां आई हो। मम्मा ने उसे गले लगाकर खूब सा प्यार किया था। सबा, तुम्हें सफीर कैसा लगा? बड़ी मुश्किलों से थोड़ी देर के लिए उन्हें तन्हाई नसीब हुई तो उन्होंने बेताबी से उसे पूछा। बहुत हैंडसम, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मामा के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। बदतमीज, माँ से मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मामा, आपने यही तो पूछा है कि सफीर कैसा लगा। मैंने सच्चाई से जो बात थी वो बता दी। अब एक अच्छे खासे डैशिंग हैंडसम और स्मार्ट बंदे को मैं ये तो कह नहीं सकती कि वो अच्छा नहीं लगा। इसका जवाब कमरे में दाखिल होती हुई आसमा ने भी सुन लिया था। मामा ही की तरह वो भी बेख्तियार कहका लगाकर हंस पड़ी। शाम को अलीना और सफीर उसे लेने आए थे। सफीर का अंदाज बहुत संजीदा और लिए दिए किस्म का था। सफर के साथ अलबत्ता उसकी कॉफी दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी। वो लोग वहाँ से रुखसत हुए तो सफीर उन्हें ब्यूटी पार्लर ड्रॉप करके घर चला गया। वलीमे के लिए उसे यहीं से तैयार होना था। वापसी में सफीर की जगह उसका एक कजन उन लोगों को लेने आया था। वो लोग होटल पहुँचे तो तकरीबन तमाम मेहमान आ चुके थे। अलीना और आसमा की आपस में इस बात पर बहस हो रही थी कि कल का मेकअप ज्यादा अच्छा था या आज का। ना तुम दोनों का कोई कमाल है ना तुम्हारे मुंतखब किए हुए ब्यूटी पार्लर का। वो है ही इतनी प्यारी, कहीं से भी तैयार होती उसे अच्छा ही लगना था। अलीना की हाला ने साफ गोई से तबसरा करते हुए इन दोनों की बहस का खात्मा करवाया। वो खामोश बैठी इन लोगों के तबसरे सुन रही थी। फंक्शन खत्म होने पर जब आहिस्ता आहिस्ता तमाम मेहमान रुखसत हो गए और सिर्फ घर के अफराद और खानदान के करीबी लोग वहाँ रह गए तो जरीना आंटी सफीर से बोली, तुम और सबा घर चले जाओ, हम लोगों को अभी आधा पौना घंटा और लगेगा। सबा बैठे बैठे थक गई हो गई। मामा ने सच कहा था, उसकी सास वाकई उसे बहुत चाहती थी। उन्हें इतनी मसरूफियत में भी उसकी थकन की फिक्र थी। वो सफीर के साथ गाड़ी में थी, वो संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। तुमने क्या सोचा? सफीर ने उस पर नजर डाले बगैर संजीदगी से पूछा। आपने क्या सोचा? इसके सवाल के जवाब में इसने भी सवाल ही किया था। उसे उससे बर्जिस्तगी की कोई तवक्का नहीं थी, लिहाजा बड़ी हैरत से इसकी तरफ देखा। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछने के बाद आंटी अंकल को हाँ कही थी। उन्होंने मेरी रजामंदी से मेरा रिश्ता तय किया था। मुझे इस शादी पर कोई एतराज नहीं था। एतराज आपको है। आपकी नापसंदगी के बावजूद भी ये शादी हो चुकी है। अब आगे के बारे में अहमियत मेरे सोचने की नहीं, आपके सोचने की है। वो इसकी तरफ देखते हुए बेहद स्पॉट अंदाज में बोली। सफीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर फैसला कुन अंदाज में बोला, मुझे समिया से हर कीमत पर शादी करनी है। इस बारे में सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। घर से मेहमान चले जाएं और अलीना अपने घर वापस चली जाए तो मैं भी फौरन कनाडा वापस चला जाऊंगा। मेरी कनाडा में जॉब इतनी अच्छी है कि मैं अपने बाप के पैसों का बिल्कुल मोहताज नहीं हूँ, वो बेशक मुझे आग कर दें। अपनी बातों पर इसका रद्दअमल देखने के लिए उसने एक मरतबा फिर विंड स्क्रीन से नजरें हटाकर सबा की तरफ देखा। क्या आपकी और समिया की जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह निकल सकती है? उसका सवालिया अंदाज एक दफा फिर जज्बात से आ रही था, हैरत से उसे देखने लगा। मैं इस शादी को कायम रखना चाहती हूँ। मेरी बहन के इंतकाल को अभी बहुत ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, मेरे पेरेंट्स अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकले हैं। अगर मेरी शादी खत्म हो गई तो इन्हें बहुत बड़ा शॉक पहुंचेगा। मैं इन्हें अपनी वजह से कोई दुख नहीं देना चाहती। आपका जो फैसला है मुझे मंजूर है। आपको समिया के साथ जरूर शादी करनी चाहिए, आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आप दोनों की शादी होनी चाहिए। मगर क्या इस शादी के साथ साथ आप मेरे साथ भी इस ताल्लुक को कायम रख सकते हैं? तुम दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। ये लड़की इसे आज सुबह से चौंका रही थी, वो एतराफ किए बिना रह नहीं सका था। तुम्हारी जगह दूसरी कोई लड़की होती तो इस सूरत हाल में इस तरह रिएक्ट नहीं कर सकती थी। बजाय रोने धोने और वाह वेला करने के, तुम इतनी जल्दी तमाम मसाइल का मुंतकी अंदाज में हल तलाश करना शुरू कर दिया है। तुम वाकई बहुत मजबूत और बहादुर लड़की हो, इसने बड़ी साफ गोई से उसकी तारीफ की। आपकी तारीफ का शुक्रिया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके सवालिया अंदाज पर इसके लबों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट धर आई थी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो सबा, तुम्हारे साथ वाकई बहुत ज्यादती हुई है। तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के से होनी चाहिए थी जो तुम्हें बहुत मोहब्बत करता। उसकी निगाहों और उसके लहजे में सर्द अजनबियत की जगह दोस्ताना अंदाज ने ले ली थी। इस वक्त ना मैं तुम्हें हाँ कह सकता हूँ और ना तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, गाड़ी घर के अंदर लाकर पोर्च में ले जाकर रोकते हुए इसने कहा। शदीद ख्वाहिश रखने के बावजूद वो इसे दो टोक अंदाज में मना नहीं कर पाया था। कमरे में आकर वो बजाय बैठने के फौरन ही ड्रेसिंग टेबल के पास आकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। सफेद ड्राइंग रूम में कपड़े बदलने चला गया। वो कपड़े बदल के आया तो वो दुपट्टे की पिंस निकालने में मसरूफ थी। वो कल की तरह बालकोनी में नहीं गया था बल्कि तकिए से टेक लगाकर बेड पे बैठ गया था। पिंस निकालते निकालते यूं ही बेध्यानी में इसकी नजर सफीर पर पड़ी तो हैरत का शदीद झटका सा लगा। वो इसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा था और ये निगाहें सुबह से लेकर अब तक की तमाम निगाहों से मुख्तलिफ थी। एक पल के लिए दुपट्टे पर रखे इसके हाथ कांपे। इसने फौरन अपना रुख बदल लिया और दुपट्टे की आखिरी पिन निकालने के बाद वो कपड़े बदलने ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। सफीर इस रात उसे नजरअंदाज नहीं कर सका।
मजीद वीडियोस और स्टोरीज के लिए हमारा चैनल यूनिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।